आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, मैं ऐसे ही बोल दूंगा, जोर से बोल दूंगा।
अरे नहीं, हम नहीं,
इसे पकड़ लीजिए ना, ध्यान से बोल। जहां गोविंद हो आनंद, गोविंद मेरे है गोपाल मेरे है।
महाराज जो इस समय हम लोगों के सामने बैठे हैं, उनके बारे में कहा है
ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं।
आपको क्या हो गए?
हमारा एक्सरे मिला दांतों का?
नहीं अभी देखा,
होगा तो अभी 5-6
दिन आ जाए। देखो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर एक आत्मा का कमरा है। चलना करो, आप अपने कपड़े को रोज खूब सारा एक्सेल से धो और खुद बचाओ। तो क्या होगा, कपड़े को रोज धो, दिन में 4 बार धो, लेकिन खुद बचाओ। फिर क्या होगा, ऐसे ही अगर हम शरीर को खूब धोए,
हम बंबई से
शैंपू से धोए और साबुन से धोए, लेकिन आत्मा को ना धोए, तो क्या होगा?
कहाँ रहते हैं?
मेलबर्न में।
मेलबर्न जो होगा उसे कहते हैं संसार।
मेलबर्न में भी
हमारा यहाँ फंस गया,
सिडनी, ब्रिस्बेन सब जगह
है। जब आत्मा की भैंस उतर रही है तो क्या होगा?
आइए प्लीज,
जब आत्मा की भैंस उतरती है तो हम पवित्र होते हैं। इसे कहते हैं पवित्र।
और पाठ में भी गए आप,
पाठ में भी आप एक कपड़ा धो
दूसरे
कपड़े को धुलाओगे तो साफ नहीं होगा। लेकिन पवित्र चीज में एक खूबी है कि वो खुद भी पवित्र हो जाती है और साथ में सारे वाले को भी पवित्र करते
हैं। यहाँ पर लाखों लोग करते हैं
और पवित्र हो जाना, ये भी अंतर है। तो जो पवित्र हो जाता है उसका क्या गुण है? पवित्र होने वाले का गुण है कि उसके पाप दूर हो गए हैं, वो निष्पाप हो गया। निष्पाप हो गया मतलब वो जैसा है वैसा आत्मा
अपनी
अवस्थित हो जाती है, निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसलिए होकर और कोई पाप का बल और भार नहीं होता। तब ये आत्मा तो सही स्वाभाविक रूप से उठती कूदती और हाथ उठाती हुई भगवान के चरणों की सेवा के लिए अग्रसर हो जाती है। ये इस आत्मा का गुण है।
आप लोग कहाँ से आए?
मुंबई से। जब ये भगवान की सेवा
के साथ में
निमग्न हो जाती है और संसार को साफ कर देती है, ये निष्पाप होने का उपाय है। मैंने गुरु महाराज जी के और यहाँ सभी लोगों के मुख से जानना है कि जिस समय हम इस रहस्य जीवन में जी रहे हैं, हम सबका कल्याण क्या है? देखो ये तीन चीजें जो हमें
करते आए हैं,
क्या क्या तीन चीजें?
एक हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण,
हम ऐसे
हरे राम
परम वैष्णव के समूह आगे हरे कथा सुने। जब सुनेंगे तो इनके दर्शन से, इनके श्रवण नाथ से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हमारे अंदर भगवान का कल्याण हो जाएगा। जब ऐसे महात्मा हमारे समूह नहीं है तब तब हम ऐसे महात्माओं के द्वारा स्थापित शिवजी मंदिर मंदिर के अंदर जो हमारे राधा माधव और चैतन्य महाप्रभु ने ये मूर्ति तैयार कर सकते हैं। किसी भी काल के फोटो को मूर्ति कहते हैं। लेकिन जब भगवान का जैसा रूप है उस रूप को ध्यान में रखकर कोई रूप बनाया जाता है तो रूप मूर्ति नहीं है, वो क्या है? वो स्वयं भगवान है। और हम लोग इन इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर सकते और भगवान हम पर दयालु होकर दो रूप से इस धरती पे प्रकट होते हैं ताकि हम सेवा करके अपना कल्याण कर सके। एक रूप है श्री विग्रह, विग्रह विशेष रूप से
दस मिनट
नमो विष्णुपदाय राधिकाय अज्ञातम् श्रीमद्भगवद्गीता प्रणामामि नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय विष्णुपदाय स्वामिनामि श्रीकृष्णचैतन्य भगवत्यानन्द अभी सुबह गुरुदेव हर की पौड़ी पे मुझे मिले और मुझे बोला तुमने स्नान कर लिया है। मैंने कहा महाराज जी मुझे कुछ शौक नहीं आया कि मैं स्नान करूं। कुछ भक्त हंसने लगे। अभी प्रभु जी बोल रहे थे गंगा परासा आई है परस परस मतलब स्पर्श से एक व्यक्ति शुद्ध हो जाता है लेकिन
जावा पर रे आज की
इस प्रकार गोल पाव लेकर जो प्रवाहित होती हुई पश्चिम आगे निकल कर चली तो बंगाल में जा करके जन्म ने उनका आश्रम तो आदि तो नदी भी यमुना के गंगा को पार कर लिए और पार करते ही वहीं तक समाप्त कर दिया आगे आए बढ़े फिर भगदड़ जी ने जब प्रार्थना की तब उन्होंने अपना जाम छीन करके गंगा
देखिए
परंतु आप इस देवभूमि में श्री गुरु पाद पद्म जैसे ऐसे दिव्य पुरुष भगवान की और करुणा की मूर्ति यहाँ सौकस से घूम करके सभी के बीच जो कि हमारे वेद वैदिक सिद्धांत के आधार पर वेदांत प्रकार पर जो भक्ति इसी की पुनर्व्यवस्था जो कि सेवा की व्यवस्था प्रकाशित करने के लिए स्वयं सौकस हम लोग देखते हैं संसार के चार विषम समुदाय और एक अद्वैत समुदाय सभी वेदों के आधार पर श्रीमद् कृष्णदेव और वेदव्यास जी के वेदांत के आधार पर चलते तो कोई अद्वैत वेदांत के पथिक बन गए और कोई द्वैत वेदांत के पथिक अद्वैत वेदांत के पथिक वे अपने को कहा करते हैं मैं
नाम क्या है
बत्रा
बत्रा जी बत्रा
आपका स्वागत है उनको
जितने
करवाते उनका स्वागत अच्छा
वो लोग नहीं करना चाहते वो पीछे रहना चाहते हैं वो पीछे रहना चाहते हैं ये आज का भंडारा भी भत्रा जी ने दिया है और मक्का जो हाँ और आपको सात आठ टोले भी लेके आए हैं ये खुद खर्च कर सकते हैं ये रिश्वत लेने वाले लोगों में से नहीं है
मथवार से हूँ जम्मू से
जम्मू से आई
जम्मू से
किसके साथ
मैं इधर पढ़ रही हूँ और मुझे ओम अंकल ने बोला था कि आज आके इधर पढ़ रही हूँ डॉक्टरी कर रही हूँ
बहुत अच्छा कौन सा ईयर है
अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है
सब एक जगह मिल जाएगा देखकर प्रभु की सेवा में अपने को समर्पित कर यह क्रम है। ऐसे कुल गुरु के लिए नहीं मिलेगी मिले जैसे पहले से देखते आए तो कभी चंडीदास और गीता पति चंडीदास और कभी जैसे कि फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा और देखिए तो मीरा भाई को मिले तो संसार में क्या है उन्होंने भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। आज हमारे मंत्र में श्री गुरु जी जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण सेवा में समर्पित कर दिया गुरु गोविंद की वाणी को संसार में प्रकाशित करने के लिए अनंत भक्ति को प्रचारित करने के लिए प्रसार करने के लिए उन्होंने जीवन का अनमोल समय एक एक मिनट एक एक सेकंड को समर्पित किया है सेवा के इस शुद्ध भक्ति प्रेम का होता है। इसलिए ऐसे भक्ति में सभी अनुप्राणित हों हम दूसरे मार्ग में कभी भटके नहीं। दूसरा दूसरा मार्ग अंधकारमय है वो मायावाद है जादू है और ठगबाजी है उसमें जीवन में कभी शांति नहीं होगी। एकमात्र गुरु के चरणों में आश्रय लेकर अनंत भाव से भगवान की भक्ति और उनकी सेवा में जीवन को समर्पित कर दिया जाए एक जीवन का साथ एक वेदांत का तात्पर्य है हमारे गुरुवर्गों की
अभी इस सभा में हरियाणा के परम आदरणीय एमएलए श्री बक्त्रा जी उपस्थित हैं। बहुत ही योग्य पुरुष हैं विचारवान हैं। मैं उनको निवेदन करता हूं कि दो मिनट कुछ यहां आ करके अपना वक्तव्य रख।
ये बता जी और कैसे एमएलए हैं उन्होंने अभी अभी राजू भाई जी ने बताया है कि वो महाराज जी को कुछ शॉर्ट कर रहे हैं। आज का प्रचार सिस्टम भी उन्होंने किया है ऐसे पॉलिटिशियन का होते हैं जो देते हैं लेने वाले तो बहुत सुने हैं।
कृष्ण ही ऐसे अवतार है जो भी आत्मा को पूरी सुगंधि देकर आत्मा को समर्पण करने के लिए आत्मा के प्रति जागरूक करने के लिए जो उनका अनुकरण करेंगे तो वही बात स्वामी भवन आज यहाँ आए। यहाँ आपने कृष्ण जी प्रणाम दिए और चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम संसारी आदमी कुछ न कुछ मन में लालसा होती है, कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ है तो प्रभु अपने आशीर्वाद देकर आप सबकी वो आशाएं पूरी करें। मुझे यही प्रार्थना करूँगा और पूरी
आशीर्वाद मिले यही मेरी प्रार्थना है। और
नेता राजनेता सरकार के लोग अगर भगवान की भक्ति में आए तो शायद प्रजा के ऊपर ज्यादा कल्याण होगा। अब मैं श्री गुरुदेव से चाहूंगा कि वो जो क्षण हम लोग इंतजार कर रहे हैं हमें कुछ सुनाए। हमारे गुरुदेव की जितनी भी ग्रंथ हैं उसको हमने बाहर लगा दिया है। देखो बिना माइक के बोलो ताकि आप लोग ध्यान से सुनो। माइक से बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता ज़्यादा, है ना? और आप लोग सब किताबें लेके जाएंगे, टेबल खाली करके जाएंगे, ठीक है? कोई रोहतक जाएगा चेयरमैन साहब भी आए, कौन कौन से चेयरमैन आए बुलाओ। प्रणाम करके जाओ, आ जाओ। एक मिनट आप मिलाओ गुरुदेव। ये भी आए हैं,
ये रोहतक शहर में।
कौन है?
रोहतक शहर में जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है उनके चेयरमैन है
ये अध्यक्ष है,
ये अध्यक्ष है कांग्रेस आई के। रोहतक कमेटी जो होती है एमसीडी उनके चेयरमैन है।
नगर पार्षद के
अजीत जैन कहाँ पर? रोहतक के ही हैं सब।
रोहतक रोहतक नगर पालिका के
चेयरमैन हैं।
तो रोहतक से बहुत लोग, आप लोग रोहतक के रहने
वाले हैं? नहीं रोहतक, ये नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं।
बहुत ये काल देना है दिल्ली के। कितने हैं लोग?
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदावे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय मंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महापतन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय नामने गौरविते। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराधकतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणती पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात दंडे स्वामी ब्रह्मचारी उपस्थित हैं, माननीय सज्जन वृंद और भक्त लोग, मैं यथायोग्य सबका अभिवादन करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। उद्देश्य है हम लोगों का यहाँ का ठाकुर जी श्री राधा माधव जी का वार्षिक महोत्सव है। इसी दिन श्री विग्रह की प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी, इसीलिए हमारे सोमनाथ जी और उनके भाई माता और सब एक वार्षिक अनुष्ठान करते हैं। इससे लोगों का कल्याण होगा। संसार में क्यों सनातनी हिंदू धर्मी है जो भगवान का शिव विग्रह को मानते हैं, उनकी मूर्ति को मानते हैं। इसके अतिरिक्त ईसाई लोग भगवान का भगवान को का रूप नहीं मानते, मुसलमान लोग भी नहीं मानते, बौद्ध तो भगवान को एकदम मानते ही। कुछ लोगों का ये कहना है कि भगवान यदि जन्म लेंगे उनका शरीर होगा तो उनको मरना ही नहीं होगा, इसलिए ये तो संभव पर नहीं, इसलिए भगवान का कोई रूप ही नहीं। हमारे यहाँ भी सनातन धर्मावलंबी अपने को कहते हैं कि जो शंकराचार्य के जो अनुयायी अद्वैतवादी मायावादी हैं वे लोग भी भगवान का कोई रूप नहीं मानते। सर्वात्मनि तं ब्रह्म, सब कुछ ही ब्रह्म ही है, तत्त्वमसि तुम भी ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं भी ब्रह्म हूं। इसका उल्टा अर्थ करके साधारण लोगों को भ्रमित कर देते हैं, साधारण पब्लिक समझ नहीं पाती इस चीज को। मैं संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन करता हूं। पहली बात तो ये सनातन धर्म है क्या, संसार में दो सनातन वस्तुओं में जो संबंध होता है वो सनातन धर्म है। ये शरीर जन्मता है और मर जाता है। संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। किंतु हाँ, दो वस्तु ऐसी है संसार में जिनका न तो जन्म है न मरण है। पहला, जिसने ये विश्व ब्रह्मांड की हम आप लोगों की सृष्टि जिसने की है उसका जन्म नहीं है, वो पहले भी था, अब भी है, सृष्टि से पीछे भी रहेगा। यदि कहो जब भगवान जैसे बौद्धवादी हैं भगवान है ही नहीं, अरे बेवकूफ, यदि है ही नहीं है कोई बनाने वाला तो अपने आप हो जाता है, तो आज कोई भी चीज आज नई क्यों नहीं पैदा हो जाती। कुछ लोग कहते हैं कि हम बंदरों के वंशज हैं, बंदरों के वंशज हैं, अब तो करोड़ों वर्ष हो गए, अब मनुष्य से कुछ और दूसरा क्यों नहीं हो जाता। इसलिए ये सब काल्पनिक झूठी थ्योरिया है, विचार है। भगवान है, यदि ये सृष्टि है इतने रूप है तो जो बनाने वाला है जरूर उसमें ये सब चीजें हैं, उसका रूप होगा। बाइबल के प्रथम चैप्टर में ये लिखा है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने के रूप समान गॉड ने ये सबको मनुष्यों की सृष्टि। अजी यदि उनका रूप ही नहीं है तो ये उसमें क्यों लिखा बाइबल में, तो उसको निकाल दो। है किसी की हिम्मत उन लोगों की जो निकाल दें? कहते हैं बाइबल पढ़ते हैं किंतु मानते नहीं, और हमारे मुस्लिम भाई भी वैसे नहीं मानते किंतु उनके कुरान के हदीस में लिखा है इन्ना अल्लाह खलाका मैं सूरत ही
मैं सूरत ही अल्लाह खुदा ने अपने रूप के समान में मनुष्यों की सृष्टि की, तो भी निकाल दे नहीं कर सकते, किंतु ऊपर से नहीं मानते हैं। और हमारे हिंदुओं के यहाँ वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में ऐसा कहीं नहीं है जो भगवान का रूप नहीं माना गया। सत्य एवं सम्म इदम आत्मराशि, वो परम सत्य भगवान है, ब्रह्म है, सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि से बाद भी रहेंगे, और सृष्टि जब है तभी रहेंगे, और उनका रूप है। यदि रूप नहीं है तो एक युक्ति देकर के समझा रहे हैं, आम है तो उसका कारण बीज भी है, बिना बीज के आम के बीज के हो जाएगा आम नहीं हो सकता। यदि कटहल है तो कटहल से कटहल का बीज से ही कटहल होगा, और फिर उसके फूल से फिर बीज निकलेंगे, फिर इस तरह से चल रहा। यदि कोई ये कहते हैं कि जैसे फल है, कोई नीम के बीज से आम या कटहल नहीं हो सकता, जिसमें जिस चीज की पोटेंसी है वही चीज उससे होगा। आम के बीज से आम, कटहल से कटहल, नीम से। एक उदाहरण लीजिए, गंगा के तट पर एक ही जमीन पर नीम के, आम के, कटहल के, बबूल के पेड़ के बीज बो दिए, और एक ही पानी गंगा के पानी से सिंचन किया गया, एक ही सूर्य से रोशनी हुई, एक ही हवा से वे बढ़े, तो वो बीज एक ही होंगे या अलग 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 होंगे? अलग अलग नहीं होंगे, कभी भी एक नहीं होंगे। इसलिए ये सृष्टि है भगवान का रूप। कहते हैं फ्रॉम नथिंग दिस क्रिएशन हैज बीन डन, हाउ इट कैन, देर मस्ट बी समथिंग और एनीथिंग, फ्रॉम नथिंग क्रिएशन कैनॉट बी। इसलिए कहते हैं हमारे उपनिषदों में पूर्णम एव, पूर्णम एव अवशिष्यते इत्यादि कहा, पूर्णम इदम, पूर्णा पूर्णम उच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्णम अवशिष्यते। पूर्ण से कोई भी वस्तु लो पूर्ण ही रहे, और कोई भी वस्तु मिला लो पूर्ण ही रहे, वो ना तो कम होगी ना बढ़े, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। उसी तरह से भगवान इन्फिनिटी परिपूर्ण है, उनसे सारा विश्व सृजन होता है, उन्हीं के अंश हैं, और फिर उन्हीं में मिल करके फिर मिल जाते हैं। मिलने का तात्पर्य उनसे मिल करके उनकी सेवा करते हैं। इसलिए हम लोगों ने विक्रम प्रतिष्ठा की है कि लोग यदि कोई भटका हुआ भी जानते अनजान रूप में आएगा, ठाकुर जी को प्रणाम करेगा या दर्शन भी करेगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे मनीषियों ने आज से करोड़ों वर्ष पहले जगन्नाथ जी का नीलाचल में शिव विग्रह, रामचंद्र जी ने भी उनका पूजन किया था, बलदेव प्रभु जी ने उनका पूजन किया, बहुत प्रारंभ काल से कृष्ण वहां गए, बलराम जी वहां पर गए, और सबका दर्शन वहां पर वेंकटाचल में और सब जगहों में, वहां पर नारायण मूर्ति है पे, सब लोग गए, और विश्व का सबसे बड़ा धनी वही वेंकटाचल है, वहां पर सभी लोग बड़े बड़े राजा लोग धनी गरीब सभी मनौती करते थे, उनकी मनौती पूर्ण हो जाती है। एक बात दूसरा, ये हम देखते हैं कि वृंदावन में कुछ ऐसे ठाकुर जी हैं, या थे अभी अभी जयपुर चले गए हैं, लोगों से बातचीत करते थे, बच्चों के साथ में खेलते थे, एक सनातन गोस्वामी थे, मदन मोहन का नाम सुना है, वृंदावन में थे। मदन मोहन ने कहा, गोस्वामी जी मैं आपके साथ में वृंदावन चलना चाहता हूँ, मथुरा में थे। चलना चाहते हो? मेरे पास में माया जाएगी कुछ नहीं, यशोदा मैया तुमको मक्खन और क्या क्या खिलाती थी और उससे पेट नहीं भरा तो और लोग गायों के बछड़े और लाखों गोपियों के तुम बेटे बन गए और उनका दूध पिया। मेरे पास तो कुछ है नहीं, नमक भी नहीं रखा था, मैं तो सूखी माधुकरी रोटी लाता हूँ और वही खा खा के मैं भजन कर। नहीं बाबा हमको ले चलो, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, जो कुछ दे देगा पानी अथवा माधुकरी सूखी रोटी हुई मेरी तो ना जे। तब चलो, तो मैं चलूँ कैसे, मैं तो मूर्ति हूँ, तो मूर्ति है तो बातचीत कर रहे हैं,
जो बात करते हैं चल भी सकते हैं,
तो जब बात करते हैं तो चल भी सकते हैं। आखिर वो उनके साथ में आए, ऐसे इंदिरा गली कुछ नहीं है, पत्थर है, तो वो क्यों बोलते हैं, क्यों चलते हैं, क्यों अनुभव करते हैं? इसलिए भगवान की मूर्ति भक्तों से बोलती है और नास्तिकों को पत्थर देखती है। इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ पर विग्रह प्रतिष्ठा की कि सोमनाथ जी के परिवार के भाई और दूसरे लोग भी समझेंगे जी ये ठाकुर जी मेरे हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा से हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, इसीलिए ये सब किया गया। पहली बात ये, अभी तीर्थ महाराज बतला रहे थे, ये समझिए कि हम शरीर नहीं है, इस चीज को समझिए। एक राजा थे, वो युद्ध में मारे गए, उनके परिवार के सभी लोग स्त्री बेटे बेटा बेटी पिता माता सभी लोग युद्ध करते, बड़े जोर से रोने लग गए, कोई समझाने वाला नहीं था। इतने छोटा सा 5 वर्ष का बालक आया, वो बालक कम था, जमराज सैन थे, उन्होंने आकर के पूछा भाई ये सब लोग रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा जे ये थे ये मर गए। मर गए? अरे ये पड़े हुए हैं, मरता है मैं गए तो कहीं नहीं, दिल्ली गए हैं, हरिद्वार जी गए हैं, चेन्नई गए, वो चले गए जहां से फिर लौटना नहीं होता, वह छूट मूट कवार करता है, ये तो सोए हैं, इनका कपड़ा कफन उठा लो, देखो तो सो रहे हैं, तो नहीं इनके अंदर में जो प्राण था वो चला गया है, ये नहीं शरीर नहीं, इसलिए मर गए हैं। उन्होंने कहा चले इसी को तो तुमने खिलाया पिलाया, इसी को तुमने बाप कहा, इसी को पुत्र कहा, इसी को अपना पति कहा। उस आत्मा को देखा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, काला है, गोरा है, सांवला है, कैसा है, और तो नहीं तो, तो देखा ही नहीं तो उसके लिए क्या रोते हो? तब उन्होंने कहा कि एक जंगल में 2 कबूतर थे, कबूतरी एक कबूतर, उनको उन्होंने अंडे दिए और उसे 4-5 छोटे छोटे बच्चे पुत्र थे भी जन्म लिया। एक दिन उन बच्चों को घोंसले में रख करके जंगल में गए दाना चरने के लिए, अपने भी खाएंगे बच्चों के लिए भी लाएंगे। उस समय में पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे और दोनों चोंच में चोंच मिलाकर के बड़े प्रेम से बातचीत कर रहे हैं, ओह हम लोगों की कैसी बड़ी सुंदर शादियां हैं, उस दिन बड़ी तड़क भड़क से सब हुआ और हमारे कितने सुंदर छोटे छोटे दिखते हुए बच्चे हैं, आज उनके लिए हम दाना लिए हैं। इतने में देखा कि हरी हरी घासों पर जंगल के भीतर कुछ चावल के कण पड़े हुए हैं। पुरुष ने कहा, स्त्री ने कहा, श्रीमान जी चलिए हम लोग यहाँ पर खाने बड़े सुंदर सुंदर मोती जैसे दिख रहे हैं, इनको ले हम और बच्चों के लिए भी ले चले, खबरदार मत जाना। इस जंगल में कहाँ से आया चावल, कोई बनिया भी नहीं है, खेती भी नहीं है यहाँ चावल। यहाँ पर किसी बहेलिए ने जाल बिछा रखा है, जाएगी पकड़ लेगा। वह तुम लोगों को सब समय षड्यंत्र की बू आती है, मैं तो चली और ढूंढ करके गई और चूमने। और इतने में एक कौवा मुस्तन बहेलिया पेड़ की आड़ में बैठा हुआ था, देखा ये चूमने लगी और मत्त हो करके बस ये जाल खींच दिया, जाल में वो गिर गई। अब तो रोने बिलबिलाने लगी और ऊपर से कबूतर भी रोता हुआ आया, तुम नहीं रहने से हमारे बच्चे में मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, तुम रहने से इनका पालन पोषण तो कर ले। इतना विलाप करने लगा कि बहेलिया ने देखा और हंसता हुआ भक्त बाण लेकर ऐसे मारा कि बाण यहाँ लगा, वो भी छटपट करता हुआ खून उगलता हुआ मर गया। वो ताली बजाता हुआ हंसता हुआ आया, इस मरे हुए कबूतर को और उस कबूतरनी को जाल में पड़ी हुई दोनों को पकड़ करके ले गया घर और पका करके खा। क्या तात्पर्य, हम लोग भी ऐसे ही हैं, मृत्यु नाच रही है कब आ जाएगी और कब हमें निगल जाएगी, कोई ठीक नहीं। इसलिए प्यारे बंधुओं, प्यारे बेटियों, जीवन का कोई ठीक नहीं है, कब मृत्यु हो जाएगी कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी हाथ में एक छदाम दमड़ी लेकर के नहीं जाना है, एक रुआ भी नहीं जाएगा। और मरने पर कहाँ जाना होगा, कुत्ते शिकार सुपर ऊपर गधे के रूप में आना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, इस समय में भगवान का स्मरण कर लिया जाए। भगवान के नाम करने में न पैसा लगता है, न कौड़ी, न बहुत परिश्रम है, कुछ भी परिश्रम नहीं, चलते फिरते उठते बैठते दिन में रात में कोई नियम नहीं, भगवान का नाम कर सकते हैं, माला से भी कर सकते हैं, बिना माला का भी कर सकते हैं किसी। इसलिए हम लोगों को चाहिए विद्वत ठाकुर जी की पूजा करें, नहीं कर सकते हैं उसका दर्शन करना चाहिए, आरती में आना चाहिए, भोग आरती में आना चाहिए, शाम को आरती आना चाहिए, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। इसके साथ मुझे हमारा कल्याण हुआ, यही बात करते हैं, अपना बहुत प्रणाम।